आज की मुरली याद है? नहीं। आज बाबा ने देखो दो तीन पॉइंट्स बहुत अच्छी सुनाई। तो बुद्धि में ज्ञान या आत्मा के लिए भोजन है। अगर ज्ञान का मनन चिंतन वर्णन करते हो तो जैसे तन दुरुस्त कहते हैं, मन भी आत्मा में दुरुस्त सशक्त रहती है। तन को स्वस्थ रखने के लिए स्नान करेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे, है ना। तो आत्मा को भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा, तो आत्मा स्वस्थ रहना चाहिए, सदा हर्षित रहना चाहिए। क्यों? ये एक शरीर है अंतिम, सारे कल्प का आधार है। अगर इस शरीर पर हमने ध्यान नहीं दिया, बीमारी आए और कुछ हुआ, सारे कल्प के हमारा जो जीवन है उसके अंदर ऊपर नीचे होगा। सारे कल्प में बाबा तो 21 जन्मों के लिए कहता है। जैसे आज कहा बाबा ने, बाप आया है किसके लिए? मौत देने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आया है। लेकिन कैसा ले जाएगा? ऐसा नहीं आपको मैं ऐसा ले जाओ, नहीं। तो ले जाके कल्प तरु बनाता है। तो कैसे बनाता है वो? तो कहा ऐसे नहीं ले जाएगा, पावन बनो, है ना। तो पावन कैसे बनेंगे वो भी बताया कि बाप को याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, है ना। तो योग में बैठते हो तो पूछो, पावन बनना चाहते हो तो पावन बनने की विधि भी बताओ, वो भी ले जाएगा ऐसे नहीं ले जाएगा। हाँ तो ले जाएगा तो फिर अपने दोबारा आना पड़ेगा। हाँ तो ले जाएगा कैसे, विधि बताया। क्यों ले जाता है? कि सारे कल्प के लिए। कल्प रूप किसको कहते हैं पता है? कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? नारियल का जो झाड़ होता है वो 100 साल, फिर बरगर कहते हैं पीपल, और वड का झाड़ वो भी 100-100 साल जीता है, है ना। तो नारियल के साथ झाड़ जो है 100 साल कम से कम फल देता रहता है। तो बाबा कहते हैं आपका भी जीवन, अभी भी जीवन में ऐसे लोग है। माता मैं देखा मधुबन में ही, प्रकाश भाई करके इधर है प्रेस डिपार्टमेंट में, उसकी माता जी यहाँ सेवा करती थी। कितने साल यहाँ बाहर मकान उन्होंने लेके रखे, महार यहाँ रही, अभी देखा 101 या 102 साल। माताएं भी मजबूत है, लेकिन खाने का सब प्रकार नियम स्वच्छता ज्ञान योग रखते हैं। तब बाबा कहता है कि ऐसा जीवन से शिक्षा देता है कि कौन रह सकता है ऐसे जीवन में। तो ऐसी स्वच्छता चाहिए, अल्प आहार चाहिए, ज्ञान योग चाहिए, स्वच्छता चाहिए, तब जाके कहा जो पवित्र है। अभी साधु संन्यासी भी कितने साल रहता है, अल्प आहारी है। बहुत खाना खाएंगे तो हजम भी करना है, नहीं वो शक्ति कहाँ जाएंगी। तो शरीर को बहुत खाना नहीं चाहिए, तो खाना चाहिए नियम अनुसार और उसको यूज करना चाहिए। तो बाबा विधि बताता है कि बच्चे बाप को याद करो, तो याद करेंगे तो पावन कल्प अपने आप नहीं बनेगा, अपने आप लेके नहीं जाएगा, जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। हाँ तो कैसे पावन बनो? तो पावन कैसे बनेंगे? याद से। तो क्या याद करेंगे आप बताओ, हमको तो आता ही नहीं, बताओ क्या याद करेंगे आप? अपने पिताजी को याद करेंगे, उन्होंने पालना किया है, खिलाया पिलाया, तो बाबा को क्या याद कर, देखा तो नहीं आपने विशेषता, क्या विशेषता है? और एक ही, दो ही, और बताओ। अब इतने साल से कहते आप कहेंगे ना हमारे पिताजी को आप जानते हो, तो बाप को अगर आप जानते हो तो पहले आते ही बाप का ज्ञान दिया। आज भी बाबा ने कहा किसी को भी बाप का पूरा ज्ञान दे दो, तो बाप कौन है? बाप को जानते हो? निर्मल शांता दादी कहती थी मुझे 3 बाप है। आज बाबा ने कहा आपको भी 3 बाप है, शरीर का बाप है और अलौकिक बाप है, पारलौकिक है। तो निर्मल शांता दादी कहती थी मुझे एक ही में तीनों है, लौकिक भी वही है, हमारा लौकिक अलग है, अलौकिक अलग है, पारलौकिक अलग है। तो दादी कहती मेरे तीनों एक है, लौकिक भी वही है, पारलौकिक भी, अलौकिक भी वही है, और पारलौकिक भी कहाँ मिलेगा? परमात्मा भी उनके ही तन में मिलेगा। तो एक में ही तीनों, है ना, एक में ही तीनों मिलेगा और हमको हमारा अलग अलग है। विशेषता है ना, विशेष आत्माओं की क्या, जैसे अभी कहते दीदी का भी समय पुण्यतिथि आ गई तो दीदी की विशेषता बताते हैं। हमने देखा दीदी की एक विशेषता आज करेगा दीदी परखने की, निर्णय करने की दीदी की विशेषता। तो उसमें एक देखा दीदी हरेक की परीक्षा लेती थी, तो ये कोई भी आया तो उसको परखती थी। तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक दिन शुरू में दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा, उसके पहले तो उस समय किसी एक भाई ने तीन सोने की पांच थी, पांच सोने की चेन बना के लाया। उसके अंदर शिव बाबा का बहुत सुंदर लॉकेट था, पहली था, उस समय नहीं था इधर यज्ञ में 80 के समय पर। तो पांच लॉकेट लाके दीदी को दिया, चेन थी और शिव बाबा का सुंदर लॉकेट था। तो दीदी ने हमको बुलाया, कहा इसको एक एक को अलग अलग प्लास्टिक में पैक करके देना। तो मैं गया, अलग अलग प्लास्टिक में डाला, पैक किया। और दीदी मुरली क्लास के बाद सबको, जो अनन्य भाई परिवार वाले हैं उनको मुरली के पॉइंट लिखती है पोस्ट कार्ड पर, और उसके बाद नाश्ता करती है। तो 10:30 बजता है, तो उसके बाद आधा घंटा ऐसे लेटती ऑफिस में। यहाँ दीदी का कमरा था, देखा बाबा के कमरे के पीछे, तो यहाँ वही बाजू में पर्दा था, उधर लेटती थी। तो मैं 10:30-11 बज गया, तैयार करके रखने गया तो ग्लास वाला टेबल था, तो थोड़ा ठक हुआ। तो दीदी एकदम जगी रहती, सोई नहीं। अरे लाया इतना जल्दी, हमने कहा दीदी इधर रखा, आप रेस्ट करो। तुरंत उठ के आ गई, आके कैसे शब्द बनाया देखो, देखा तो एक को खोला, खोल के कहा ये आपके गले के लिए है। दीदी मैं कभी सोना पहनता ही नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं पहनते हो, लेकिन दीदी को लगता है ये बहुत सुंदर नया बन के आया, ये आपके गले, आप पहनो। हमने कहा नहीं, मैं कभी पहनता नहीं, ना करके बाहर आया, लिया नहीं। बाहर आने के बाद विचार आया कि ये मेरी परीक्षा थी, कि कोई सोना अच्छी चीज देखने के बाद आपके अंदर भी कोई इच्छा है, कि इच्छा अपवित्रता है। बाबा ने कहा ऐसा लेके जाने नहीं जाएगा, पवित्र भी बनना। पवित्रता क्या, मैंने शादी नहीं किया, मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, इतना नहीं। इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान चाहे, इच्छा के पवित्रता की कहां क्या है। तो उस समय परीक्षा लिया कि कहा कि बाहर आते ही मुझे विचार आया ये दीदी मुझे क्यों दे रही थी, तो किसी ने ला के दिया, मेरे लिए तो नहीं है। तो परीक्षा थी, कहीं वस्तु कुछ देखकर मन में इच्छा है आपके, अगर आप जाएंगे तो कोई देगा तो लेगा ना, आप कहेंगे नहीं चाहिए, कहेंगे माता जी बताओ, भाई बताओ, दीदी दे रही है, अभी दीदी सौगात देती है दादिया, तो नहीं लेंगे आप बताओ, पहले लेंगे, अरे खुश हो जाएंगे, सदा के लिए रखेंगे। तो हमने कहा नहीं, फिर बाहर आती, उस दिन से विश्वास रखती थी। तभी भी मना मनुष्य विश्वास कैसे रखता है, तब देखा कभी भी घूमने जाती थी, किचन में 3 दफा चक्कर लगाती थी, चल नहीं सकती थी पूरा, तो हाथ पकड़ करके पूरा 4-5 बजे किचन में सब जगह पर चक्कर लगाती थी। खाने के बाद 100 कदम चलना है, तो किसी को पकड़ करके चलती थी। तो कहती थी दीदी बोलने के लिए सिंधी शब्द यूज करती थी, इतनी हिंदी तो मुझे, कितने मैं लिख के देती हूँ, दीदी आपका पढ़ ही नहीं सकते हम, कहते बैठो मैं सिखाती हूँ। तो माँ जैसी पालना, हर प्रकार की परीक्षा भी लेंगी, परखने की शक्ति कहा किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, ऐसे अपने आप कोई नजदीक नहीं करेगा ना। आप कहे भगवान के मैं नजदीक जाना चाहता हूँ, आपने मंदिर बनाया तो आप जाके पूजा कर सकते हो, आपने बनाया नहीं, पंडित चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, योग्यता चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। तब बाबा ने कहा बाप आया है ले जाने के लिए, किसको ले जाएगा, कहां जाएंगे आप, परमधाम में जाके बैठेंगे कि सत्युग में जाएंगे, विष्णुपुरी में जाएंगे, कहां जाएंगे, तो वो अभी निर्णय करना है। तो बाबा कहता है कि याद करो, अभी याद कैसे करे, याद करो कहेंगे तो याद कर रहे हो, अभी माता जी बताएंगे, माता जी आप योग में बैठते हो तो याद करते, बाबा को क्या करते बताओ, हाँ हाँ वो कैसे करते आत्मा? ये भी माता जी कहते मेरा पिता परमात्मा है, आप भी कहते तो सबका परमात्मा है वो, तो आपका अकेला का नहीं, तो कैसे? और बताओ भाई, बताओ कौन बताएगा भाई, बताओ। बाबा को याद करने बैठते अमृत वेला तो और कोई याद नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने कहा याद करो तो पावन बनेंगे, एक ही उपाय है। हाँ, और बाबा जो बना रहा है स्वर्ग विष्णुपुरी में, वहां लेके जाऊंगा, ऐसा शरीर दूंगा जो कभी बीमार नहीं होंगे, कल्प वृक्ष जैसे सबको सुख देने वाला, तो अपने आप ऐसे बनेगा, ऐसे देगा किसी को नहीं है ना, तो उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा ना, तो क्या पुरुषार्थ करेंगे, कौन बताएगा? सुनने के लिए अच्छा लगता, आप भी कुछ बताओ। हाँ बहन जी बताओ, क्या योग करते हो? बाबा को याद कहते हैं, क्या याद करेंगे आप बाबा को? भक्ति में भी करते थे, मंदिर में बैठ करके भगवान की याद करते थे, महिमा करते थे। अब भाई जी ने कहा ऐसे ही, दोनों में अंतर है। अगर मूर्ति में, मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के भी बात करते थे ना, महिमा करते थे ना, भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ऐसे करते हो। चिंतन करते हो तो परमधाम का क्या चिंतन करते हो? वो पूरा बताओ, पूरा कितने, दो ही बता रहे आप। मतलब पूरा नहीं जानते हो। हाँ देखो माता जी बता रहे, देखो बाबा आज आपने, बाबा से बात करते माता जी, बाबा आज आपने मुरली में ये बताया था, बहुत अच्छा बताया था, लेकिन हमने किया नहीं, ऐसे भी बताएंगे ना। बाबा आपने बताया था, श्रीमत दिया था, लेकिन हमने किया नहीं है, ऐसे बताएंगे। देखो रूढ़ियान करने के तरीका बताती है। हाँ तीन तरीके हैं। एक है बैठ करके ज्ञान का चिंतन करते हैं, सवेरे बैठे ज्ञान का चिंतन करते हैं, मुरली ऐसा कहा, बाबा ने आपने ऐसे कहा, तो एक ऑर्डिनरी लेवल। दूसरा सूक्ष्मतन में बाबा से रूढ़ियान करते हैं, फरिश्तापन की स्थिति का सूक्ष्मतन में, बाबा आपने ऐसे कहा, आपने, आप ऐसे करते हो, आपने ऐसा समर्पण किया, तन इतना सहन किया, इतनी बड़ी सबको पालना किया, बाबा से रूढ़ियान सूक्ष्म, आपके जैसे मुझे फरिश्ता बनना है, आप कर्मातीत बने, तो रूढ़ियान सूक्ष्मतन में करते हो। और एक करते हो परम धाम में, योग अग्नि चाहिए, बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हर चीज की विधि है ना, किसके लिए कर रहे हो? इसके लिए कर रहे हो। तो आत्मा समझना मिनटा जब योग में बैठते हो, अमृत वेला और शाम को बैठते हो, 10-15 मिनट आत्म चिंतन करो पहले, आत्मचिंतन उड़ने के लिए, कौन उड़ेगा? मन बुद्धि जाएगा ना, तो ये स्वच्छ नहीं है, सारा दिन में इधर उधर के देखा सुना विचार किया, तो मन बुद्धि को स्वच्छ करना पड़ता है। जैसे अभी कहते हैं खाना खाना ऐसे खाने बैठ जाओ, नहीं हाथ धो लो, कहते हैं ना सफाई चाहिए। तो अगर मन और बुद्धि, ये दो हाथ, ये दो पंख है, ये स्वच्छ नहीं तो ऊपर एकाग्र नहीं होगा, इधर उधर माया व्यर्थ विचार आएंगे, सारा दिन में इनको देखा, इनको देखा, ये सुना, सब याद आएगा बैठा हुआ है। तो जब बैठते ही आत्मचिंतन करो, कैसे करो? हाँ मन, विधि है, मन बुद्धि दोनों एक होना चाहिए। मैं तो कहता हूं मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, अरे कल जाना है, कल ये करना है, आएगा ना? कौन कर रहा है वो? दो आत्मा एक शरीर के अंदर, नहीं कौन करता है वो? हाँ मन कर, मन तो बोल रहा है मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु हूं चमकता हुआ सितारा हूं, और कौन है? दो आत्मा होंगी। हाँ ये इस दुनिया में, यहाँ बाबा ने आके सिखाया, बच्चे बुद्धि है, बुद्धि भटकती है, तो उससे बात करो, मैं कौन उसको पूछो, वो बताएगा, मेरा रूप क्या है वो बताएगा, ज्ञान जो सुना हुआ वो यूज करो। तो आत्मचिंतन करने की विधि चाहिए, फिर परमात्मा चिंतन करो। शिव बाबा कौन, कौन है वो शिव बाबा? शिव बाबा है पवित्रता का सागर, याद रखना। शिव बाबा कौन है? शांति का सागर। शिव बाबा कौन है? आनंद का सागर। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। शिव बाबा कौन है? दुखहर्ता सुखकर्ता। शिव बाबा कौन है? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा कौन है? भाग्य बनाने की विधि बताता है। दान सब लोग करते हैं, लेकिन दान करने की विधि बताता है। मैंने किया गया खत्म, मैं नहीं बाबा, ये आपका है। दान दुनिया में भी करते हैं, तो दान करने की विधि, कर्म करने की विधि, भाग्य बनाने की विधि संगम पर बताता है। तब कहा एक का पदम गुना मिलेगा। सेवा सभी लोग करते हैं, माता जी घर में सब्जी काटते, खाना बनाते, यहां भी करते हो, दोनों में अंतर क्या है? यहां जब बनाते हो तो बाबा को भोग लगाना है। घर में कहते ना पति को अच्छा लगता है, बच्चे को अच्छा लग रहा है, उसकी याद में बनाते हो, दोनों में अंतर है। ये पदम गुना भाग्य बनाता है, बाबा को भोग लगने वाला है, भगवान की याद अपने आप आएंगी। और वहां भोग बना रहे हो फिर भी आएंगे, नहीं मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, पति को ये अच्छा, उनकी याद आएंगी, दोनों में अंतर। ये विधि बताता है भाग्य कैसा बने, इसलिए भाग्य विधाता है। और दिव्य बुद्धि दाता, आठ मुख्य शक्ति है, अष्ट रतन। इसलिए सत्ययुग में अष्ट राजाएं हैं, अष्ट आठ गद्दी है। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है ना, दो नहीं है, वो विद्या दे नहीं सकती है, सरस्वती विद्या देवी है, लक्ष्मी एक है। तब बाबा ने आज कहा दुर्गा को एक ही नाम होना चाहिए ना, काली क्या क्या नाम दिया, क्योंकि उनके गुण देखा, जो भी जाए बोल दिया, कौन पूछेगा काली कब थी, हाँ कब थी वो, किसने देखा, तो कहा एक ही, तो एक एक का एक गुण। तब बाबा की सर्वशक्ति, तब बाबा कहता है सर्वशक्तियों को अपने अंदर धारण करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। अपने आप नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर माना मालिक, अधिकार। एक शक्ति के ऊपर अधिकार करो, पीएचडी करते दुनिया में है ना, मास्टर कहते एक में, तो आटो में करो, कर सकते हो, कम से कम एक के ऊपर करो। सबको सुख देने का बाप सुख देता है, मैं भी सबको सुख दे दू, दुख सुख दुख सुख हर सुख दे, दुख हरता सुख करता है ना, एक के ऊपर मास्टर करो। ज्ञान का सागर है वो, तो आप भी ज्ञान सुनो, चिंतन करो सवेरे से शाम तक, निरंतर दान करते रहो, औरों को सुनाते रहो, आप भी चिंतन करते रहो, उसके ऊपर मास्टरी करो, ये भी हो सकता है। एक शक्ति कर आठों पर करते हो मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी आप पूछो किस पर मास्टर सर्वशक्तिवान हो, किस पर मास्टरी किया है? अभी दो तीन दिन पहले देखो बाबा ने कहा था स्लोगन में, मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है, कौन बताएगा? दो तीन दिन पहले, हाँ देखो पक्का है, माताओं को याद है इसलिए पूछना पड़ता, पूछेगा तो बार आएगा। बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान वो है, स्लोगन में सुनाया, जिनके संकल्प और कर्म महान हो, श्रेष्ठ हो, व्यर्थ नहीं हो। ये कौन, ये क्या, ये माता जैसे क्यों, ये इधर किधर के, ये व्यर्थ दे धर्म, महान विचार हो। तो पूछ लो क्या हम भगवान के बच्चे हैं? दुनिया में लोग कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे होंगे, कहने से होगा आपको मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो? बाबा बताता बच्चे ये पढ़ाई किया तो ये होंगे, ऐसे नहीं मैं डॉक्टर हूं सामान ले लो चलेगा, डॉक्टर हो आप, पढ़ाई नहीं किया डॉक्टर भी नहीं, तो ये अपने ठगी करने देते होगे ना। तब बाबा डेफिनेशन देता है, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान के बच्चे कहते हो, संकल्प महान हो, कर्म महान हो, कितना आप कहेंगे 50% ठीक है, तो 50% बाबा के है, 50% रावण के है, दो ही होंगे ना। आप कहेंगे पूरे नहीं बने, आधा आधा है, आधा इधर है आधा उधर है, तो कहना पड़ेगा ना मास्टर नहीं है, पूरा नहीं बने, तो ये चेकिंग। तब बाबा ने कहा याद करने की विधि चाहिए, विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होती है, नहीं तो बैठते नींद आएगा, इधर आ गया, इधर देखा, दो तीन मिनट बैठे उठ के चले गए, एक जगह पर 15 मिनट आधा घंटा बैठ ही नहीं सकते। तपस्या का, साधना का, और ये सारे कल्प के अंदर संगम पर ही शिव बाबा आके सिखाता है। देखो एक माता थी कन्या जैसे लगे मुझे, सन्यासी थी, तो हमने कहा वो 2 साल हिमालय पर जाके तपस्या किया, तो उनकी टीचर थी बता रही थी 2 साल हिमालय पर थी, तो टीचर किस कारण फोन आया चली गई, वो अकेली थी, तो मुझे लगा कन्या है, तो मैंने पूछा क्या आपने 2 साल हिमालय पर क्या तपस्या किया, बताओ। आप कहते हैं साधु साधु ने तपस्या किया, क्या तपस्या किया? अभी आपको भी पूछेंगे, माता जी कहेंगे एक महीना मधुबन में रही, बहुत अच्छा योग लगा, क्या योग लगाया बताना पड़ेगा ना, क्या किया बताएंगे? अमृत वेले योग में बैठ के क्या किया? तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? तो करेंगे तो बताएंगे ना, हमने जाके योग में ऐसे किया। अब उसको पूछा मैंने, उस सन्यासी को, कि कहते दो साल तक ओम की धुनी करते थे आप, तपस्या तपस्या कहते हम, क्या तपस्या कर रहे थे? ओम की धुनी बस, कोई ज्ञान का चिंतन, भगवान का ज्ञान ही पता है। तब बाबा ने कहा कोई भी मुझे याद नहीं कर सकता है, मैं स्वयं आके बताता हूं। अभी बाबा के बच्चे, इनको भी पता ही नहीं है, बाबा को याद करो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, तो पक्का भी एक बोलता है तो सौ सुनते हैं। तब बाबा ने कहा सही ज्ञान हो तो सही औरों को बताओ, नहीं तो ये भक्ति मार्ग जैसे कैसे, एक मूछ वाला एक पूछ वाला, ये कैसे हुआ? तो जिसने जैसे बनाया, कौन पूछता है? अभी देख लो आप सारे भारत में सारी देव देवताओं के चित्र देख लो, किसी ने क्या क्या बनाया, एक लक्ष्मी नारायण के चित्र को किसी ने हिलाया नहीं। जैसे शुरू से लक्ष्मी और नारायण, जैसे कि ऐसे ही राम गणपति को कपड़े पैंट पहनाते हैं, लक्ष्मी को क्या करते हैं, इसको किसको, सीता को क्या करते हैं, नारायण को कैसे दिखाते हैं, राधे को कैसे दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं सबको हिलाते हैं, सबको अपने मनमत से चित्र दिखाएंगे। लेकिन एक लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, जैसे शुरू में था, शुरू से कोई वैसे भी हिलाया नहीं, ऐसे कि ऐसे मर्यादित, जैसे कपड़े थे जैसे वैसे ही, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। वही परंपरा आज भारत में भी चलती है, आज तक भी। कैसे है वो देखो, भारत के प्रेसिडेंट के लिए कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ भी बोलो, बाकी मिनिस्टर के लिए कुछ भी, कैसे भी चित्र दिखाओ उनका, है ना, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ये परंपरा है। भारत के सबसे पहले लक्ष्मी और नारायण, उनके चित्र को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता आज तक भी, जैसे चित्र वैसे ही। शंकर के लिए क्या करते देखो, कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, है ना, तो लक्ष्मी का देखो, लक्ष्मी और नारायण, उसके चित्र को कोई किसी प्रकार के छेड़ देखा, मैंने सारा चित्र देखा, उनके दोनों चित्र को कहीं भी सारे विश्व के अंदर देख लो, देखा किसी ने है, किधर भी है, गणपति का देखो, पार्वती का देखो, राधे का देखो, कृष्ण का देखो, और किसी का, हनुमान का देखो, क्या क्या रूप बनाया, जो चाहे बना देता है अलग अलग रूप। तो ये भारत के एक मिनट आज तक भी चलता है, प्रेसिडेंट के लिए कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मालिक है। तो इसके लिए बाबा ने आज ये कहा, क्या करता हूं मैं, कल्पतरु बनाता है। फिर कहा तीन बाप है, और क्या सुनाया और बताओ, हाँ तो मरने के बिना तो जा ही नहीं सकते है, सत्युग में जाना है तो। और माताजी क्या कह रही थी, हाँ संगम पर तीन है ना, सत्युग में एक ही है, परमात्मा की जरूरत नहीं है, अलौकिक गुरु भी नहीं चाहिए, एक ही बाप है, और संगम पर हाँ, भक्ति में दो है, एक परमात्मा को भक्ति में मानते हैं, है ना, एक लौकिक है। तब कहा निर्मल शांता दादी कहती थी हमारे एक में ही तीनों है, ऐसे भी है, और अब भी कहती थी ये शरीर छोड़ने के बाद भी मेरा वही पिता होगा, वही जन्म लेंगे, मेरा संबंध उन्हीं के पास ही है, कहाँ जाएंगे, उसी के पास, सत्युग में वही होगा, यहाँ छोड़ने के बाद भी दूसरा नहीं, वही पिता होगा, सत्युग में पहले नंबर में भी वही होगा, अंत में कलयुग का जन्म वो भी मेरा फिक्स है, आदि में भी है अंत में भी, बोलती थी कहते मेरा आदि में भी वही पिता होगा, लौकिक में भी सत्युग में भी और कलयुग के अंतिम जन्म में भी वही होगा, ऐसा आपका हमारा होगा नहीं। और क्या बताया बाबा ने आज, हाँ देखो बहुत अच्छे पॉइंट है ना, और दो रह गए वो स्लोगन और वरदान, धर्म और कर्म। इसका कौन अर्थ बताएगा, आप में से कोई बताओ, ये पैंट वाला भाई बताओ, धर्म और कर्म क्या है, हैट वाला भाई बताओ, हाँ ये बताएगा, आप बताओ धर्म और कर्म का अर्थ क्या बताया, हाँ को क्या है वो। कर्मों में धर्म यूज करो, तो कर्मों में धर्म क्या यूज करेंगे, धारणा क्या है, विधि, कर्म कैसे करना, तो ज्ञान के आधार से। अभी दुनिया में पूछेंगे कर्म करने वाले बिजनेस करते हैं लोग, कर्म बिजनेस के अंदर ले लो, तो वहां धारणा होती है बिजनेस के अंदर कि एक दूसरों को लूटते हैं। माना एक रुपया का सामान लाया बाहर से, 10 रुपया लेते हैं, तो लूट हो गई, 5 रुपया लेना चाहिए। 1 रुपया आपका खर्चा है, आपका भी पेट है, जी संसार है, उसके लिए ले लो, 1 रुपया भाड़ा है, 1 का 5 गुना ले लो, 10 गुना नहीं। धर्म कहेंगे कुछ धारणा, लोग क्या कहते हैं, हम इधर से लेते हैं और इधर दान करते, मंदिर में दान करते हैं, भगवान को देते हैं, वो दान नहीं है। इधर चोरी किया और इधर दान करो, यहां लूटा और इधर दान होगा, धर्माओं करते हैं नहीं। धर्म ना कोई धारणा, सत्यता, पैसे कमाओ, 1 का 5 गुना ले लो, आपके लिए है, दुकान का भाड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन है, टैक्स है, और कुछ है, 5 तो मर्यादा है, 10 लेंगे लूट कहते हैं, अधर्म। कर्म श्रेष्ठ ने भ्रष्ट हो गया, दूसरों को भी दुख, उसके कारण जो ऐसा पैसा कमाते हैं तो वो भी नहीं खा सकते कि उनके परिवार वाले सदा बीमार, कई इनकम टैक्स वाला आएगा, कच्चो शांति नहीं है। घर में पैसा संपत्ति होते भी उस पैसे से सुख नहीं है कि दूसरों को दुख देके कमाया। तो तब का मर्यादा धर्म, हर कर्मों के अंदर कुछ नियम होना चाहिए, है ना, तो धर्म होना चाहिए। क्या धर्म, वो अभी तो माता जी का धर्म क्या है बताओ, माता का धर्म है बच्चों को खाना खिलाना है। अभी माता जी कहेंगे मुझे शुगर है, मैं फीकी चाय पीती हूं, तो सबको फीका पीना चाहिए, नहीं आप कहेंगे ना हमको शुगर है, तो माता जी कहेंगे घर में सबको शुगर फ्री खाना, हम बिना चीनी का चाय पीना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। माँ का धर्म है बच्चों की गृहस्थ की पालना करना, है ना। अब आप कहेंगे सवेरे 7 बजे मुरली सुनने जाना है, और बच्चे 7 बजे स्कूल में जाते हैं, पति 8 बजे नौकरी में जाता है, तो क्या आपका धर्म क्या है, नहीं मुरली सुनना है ना, मुरली बाबा आया, भगवान आया, ये करेंगे कि वो करेंगे बताओ, हाँ दुर्मे का सवेरे छोड़े, सवेरे 7 बजे मुरली शुरू होती सेंटर में, अभी माताजी धर्म का संकट में आ गई, कहते मैं बाबा की सुनू, भगवान की सुनू, क्या कि घर की सुनू, धर्म संकट किसको कहते हैं, तो बाबा ने कहा धर्म कर्म के अंदर, कर्म आपका उसमें धर्म, गृहस्थ धर्म कहा, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ धर्म है कि ये परमात्मा ये करना चाहिए, बताओ क्या करेंगे आप, हाँ बताओ माताजी, आपने ये बताएंगे, माताजी बताएंगे, ठीक, माताओं के सामने एक प्रश्न है ना, धर्म संकट है ना, घर में बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी चाय बनाए, पति नौकरी में जाता है, वो करे कि 7 बजे मुरली, हाँ तो ऑनलाइन में भी 7 बजे चलता है ना, बाद में नहीं मिलेगा, हाँ तो क्या करना चाहिए बताओ, ये धर्म संकट है, तो परिवार में क्या करना चाहिए, तो सब छोड़ करके सेंटर में जाके बैठो, हाँ तो गृहस्थ धर्म है, इसको निर्णय शक्ति चाहिए, हाँ धर्म आपका गृहस्थ धर्म है, तो गृहस्थ को पहला संभालो, फिर दिन में उसके बाद समय मिलता जाके बाबा ने व्यवस्था किया, माताओं को दिन में सुनाओ, समय निकालो, उस समय अपना धर्म देखेंगी, जो गृहस्थ बनाया वो धर्म नहीं देखेंगे, आप अपना सुख देखा, नहीं मुझे मुरली क्लास में जाना है, तब गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा होने का कारण यह है, पति परिवार वाले क्यों रोकते हैं, क्यों बंधन डालते हैं, आपने गृहस्थ, अगर आप कन्या थी, स्वतंत्र थी, जो चाहे करो, कोई पूछता नहीं, स्वतंत्र है, गृहस्थ बनाया तो गृहस्थ धर्म निभाना है। तो ये इसलिए कहा कर्म के अंदर धर्म धारणा क्या होनी चाहिए। तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे, मुरली मिस करे भगवान सारे क्लब में एक ही दफा मिलेगा। हाँ, तो हमने देखा एक जगह पर बॉम्बे में बहुत बड़े परिवार, सब कुछ है, एक ही बच्चा है, 7 बजे माताजी उठती है और 7 बजे को ही एक्यूरेट बस बाहर आता है बच्चे को ले जाने के लिए। वो 5 मिनट पहले उठती है, फटाफट उसको कपड़े पहनाए, चाय बनाए, 1-2 बिस्किट दिया, एक दिन देखा 2 बिस्किट दिया, एक दिन देखा 1 ब्रेड का स्लाइड दिया। और वो कब आता है, दिन में 2 बजे वापस आता है, पहले नहीं, 5 मिनट पहले उठे, फटाफट उठा, स्नान भी नहीं कराया, कपड़े पहनाया उसको, फटाफट चाय पिलाया, बस तब तक देखा आई, बस पर पहुंचा दिया बॉम्बे। अच्छा, बड़े बड़े कहेंगे आज भगवान आपको क्या खिलाता है इधर, भगवान की पालना और बच्चों के बाहर दुनिया के संसार की पालना में अंतर देखो। यहां भगवान रोज आपको अलग अलग चीज, भगवान की पालना गृहस्थ में भी। तो वो कहते हम भी सोना है, उठेंगे, उठे नहीं, बच्चों को 2 बिस्किट खिलाए, चाय पिलाया, भेज दिया, 2 बजे वापस आएगा स्कूल से, तो क्या रहेगा, पालना कौन करता है ना, ऐसे करते, ऐसे होता है ना। हाँ, तब बाबा ने कहा कि धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी ड्यूटी, कि ये जानना चाहिए क्या करना चाहिए, बच्चे गृहस्थ बनाया उसकी पालना करना चाहिए, धर्म आपका है, गृहस्थ धर्म कहा, संन्यास धर्म कहा, आधा कल्प के बाद संन्यास धर्म आया है ना, गृहस्थ धर्म क्या, संन्यास धर्म क्या। अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद यहाँ भी धर्म है, कर्म है, कैसे करना चाहिए, तो धारणाएं बताए बाबा ने। तब कहा कर्मों के अंदर धर्म हो, धर्म मीन्स हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये नहीं, कुछ धारणाएं, कुछ नियम, कुछ मर्यादा। जैसे बहुत लोगों का धर्म है खाना आया, बाबा को या भक्ति में भी था, बाबा को याद करके खाना खाना है, ऐसे नहीं खाना, बाबा को याद करके खाना खाना है। अब इसकी कहानी सुना, आज देखा विद्या बहन कानपुर की इधर आई है, हाँ आज देखा, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि रतन मुनि दादी की माताजी थी, यहाँ यहाँ ही रहती थी, जब देखा किसी ने नहीं देखा, तो रतन मुनि दादी की, तो वो कलकत्ता से मधुबन आ रही थी, तो सवेरे 4 बजे स्टेशन पर कानपुर में ट्रेन आती है, तो उनको खाना देना है, 4 बजे खाना देना है तो कैसे होगा, बनाना कब पड़ेगा, वो 2 बजे उठ करके खाना बनाया और गड़बड़ी करके ट्रेन चली नहीं जाए, फिर कहीं मिलता नहीं खाना, फिर मधुबन, उसके बाद कहीं रुकती नहीं उस समय में, तो गड़बड़ी में टिफिन भर के लेके देने गई। पहले दादी जी ने पूछा, हमने भी यहां भी देखा, यहां भी थी वो, किसी ने नल को हाथ लगाया, वो नहीं, माई ने हाथ लगाना नहीं चाहिए, तो हाथ धोएंगी नहीं, हमने भी यहां रहते समय देखा, टोली भी खाएंगी, बाहर से सेंटर से आया तो नहीं खाएंगी, बाबा के घर से बनाए तो ही, इतनी सफाई थी। तो उस समय उन्होंने पहले पूछा खाना मिलते, बहन जी बाबा को भोग लगाया, अब बहन जी तो भोग कहां, गड़बड़ी में भोग कहां लगाए, उन्होंने कहा झूठ बोलना पड़ा, हाँ, फिर पूछा भोग लगाया मैं खा सकती हूं, 3 दफा पूछा, अब बताओ क्या कहना चाहता, धर्म संकट है ना, कर्म में कर्म है, कर्म में धर्म। तो यहां क्या बोले, अगर ना कहेंगे तो खाएंगे नहीं, पक्के है बाबा के धारणा वाले, तो नहीं खाएंगे, उधर से इधर तक वो भूखी रहेंगे तो क्या करे, झूठ बोलेगा तो चलेगा। अब झूठ उस दिन से आज तक याद रहा एक अनुभव, आज बाबा ने स्लोगन में यही कहा, अनुभव के सीट पर सेट हो जाओ मन और बुद्धि को, तो अनुभव क्या, एक बार कुछ होता है सीख लिया, उस दिन से जब भी खाना बनेगा तो आपको तुरंत याद आएगा, हाँ अनुभव है, एक बार हुआ है, झूठ बोला है मैंने, दोबारा ये नहीं होना चाहिए, भूल होती है, एक दफा होती है, अगर एक बार हाथ लगा इधर शौक लग गया, दोबारा हाथ लगा तो तुरंत याद आता है, अरे शौक लगेगा, अनुभव। अब आज बाबा ने कहा स्लोगन में, अनुमन और बुद्धि को, मन को भी पता है इनको देखने से गलत विचार आते हैं, इधर देखना नहीं है, ये खाने से ये होता है तो ये नहीं खाना चाहिए, बुद्धि को अनुभव है,
है ना,
क्या सोचने से क्या होता है। तो अनुभव के सीट पर सेट होकर के बैठो। देखो उन्होंने एक बार पता चला, वो कहते आज तक भी मुझे याद रहता है कि भोग लगाने के बगैर न किसी को देना है न खाना है। ये मर्याद कर्म के अंदर, धर्म कर्म तो करते हो, धर्म है कि धारणा है, धर्म माने ये धारणा, मुझे बाबा को याद करने के बगैर भोग लगाने के अंदर औरों को देना है नहीं खाना भी नहीं है। तो ऐसी धारणा चाहिए। तो बाबा ने स्लोगन में सुनाया कि मन और बुद्धि की किस सीट पर बिठाओ, तो अनुभव का सीट कौन सा है। हाँ, जीवन में बहुत सारे अनुभव है, मन के अंदर कुछ विचार आया, कुछ सोचा, कुछ बोला, ये सोचने से ऐसे हुआ, अनुभव पुराने का है ना, कुछ देखा, बुद्धि देखती है, कुछ देखने से ऐसा हुआ, तो दोबारा ये चीज नहीं देखनी चाहिए, दोबारा ऐसे विचार दोबारा नहीं करना चाहिए, तो इसको व्यर्थ कहते हैं। तो ये चीज देखने से ऐसे होता है, तो ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो ये अनुभव एक बार देख होता है, तो जब भी दोबारा करते हो उस सीट पर सेट रहो सदा, इस ऐसे सोचना नहीं, ऐसे कर्म नहीं करना है, तो दोबारा नहीं होगे, तो श्रेष्ठ कर्म होगा। भूल होती है एक बार, भूल से सीखना है। हा? क्या कहा, अपसेट माना अगर नहीं होंगे सीट पर नहीं होंगे, अगर अनुभव से नहीं क्या दोबारा ऐसे गलत हो गया, दोबारा हो गया तो अपसेट हो गया। अरे अरे एक बार भूल हो गई, दोबारा चिंता हो गई, दोबारा मैंने गलती हो गई, तब मन में हलचल होंगे ना, देखो उस दिन मुझे पता था मेरे से भूल हो गई थी, दोबारा मैंने वही भूल किया, तो पश्चाताप होता है, अपसेट हो जाता है। बुद्धि की इंग्लिश शब्द है ये, इसलिए माता जी ने सही पूछा, तो इंग्लिश शब्द समझ में नहीं आता है ना, अपसेट नहीं होते है, अंदर कोई उलझन नहीं होती कि एक बार हुई तो याद नहीं रहा, इसलिए कहा उस सीट पर बैठो। अगर उस सीट पर बैठी जब तो किसी ने कहा माता जी इधर नहीं बैठो, तो दोबारा बैठने जाएंगी, उस दिन मुझे कहा था यहाँ नहीं बैठना चाहिए, दादी का सीट है यहाँ नहीं बैठ, तुरंत याद रहेगा ना, इसको कहते हैं। दूसरा कोई कहे तो लगता है देखो मुझे क्यों उठाया, आपको उस दिन बताते एक बार बताते तो बार बार नहीं बताते, तो अंदर खाता है, बुद्धि को याद रहता है, समझा। इसलिए कहा धारणा बुद्धि के अंदर याद है तो दोबारा नहीं होगा, अपसेट नहीं होंगे। समझ में आया, सारे पॉइंट हो गया, पांच पॉइंट हो गया। एक ऐसे मुरली के पॉइंट याद रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, औरों के साथ वर्णन करना चाहिए। एक है मन बुद्धि को कैसे सीट पर सेट करना चाहिए, और दूसरा श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म क्या है, तीसरा हाँ बाबा ने कहा आपका जीवन मैं कैसा बनाता हूं, कल्प तरु के जैसा, कल्प वृक्ष कैसा, सदा सुख देने वाला, कभी बीमारी नहीं, सारे कल्प नहीं, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। तो याद चाहिए बाबा को विधि पूर्वक, फिर बाप क्यों आया है ले जाने के लिए, ऐसे ले जाएगा, ऐसे मुरली के पॉइंट नोट करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, तब मन स्वच्छ होगा, तो कमाई होंगे, दान करना चाहिए, औरों को सुनाते रहो सवेरे दिन में शाम को, तब कर्म श्रेष्ठ होता है, अपने आप नहीं होगा। एक बार मुरली सुन लिया आपने, अपने आप बुद्धि में चलेगा नहीं, बाकी सब कुछ आएगा देखना, ज्ञान नहीं ठहरेगा। तो अपने आदत डालना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, ठीक है। ओम शांति।